الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے ہر حال میں اسی کی توفیق ہے اسی کا کرم ہے کہ جس پر میرا یہاں قیام بھی ہوتا ہے اور یہاں سے سفر بھی ہوتا ہے. اب تو دنیا سفر کی دنیا بن گئی ہے. ایک لفظ ہولیڈے کا ایسا مل گیا ہے لوگوں کو کہ پچھلے زمانے میں جو کبھی سالوں میں سفر نہیں کرتے تھے اب ان کے لیے ہر سال ہولیڈے لازم اور فرض ہو گئی. تو لوگ سمجھتے ہوں کہ یہ بھی گھومتا رہتا ہے ہولیڈے پر جاتا رہتا ہے کبھی یہاں کبھی وہاں. تو مختصر ایک بات عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اس نے سب سے پہلے مجھے علم کی نسبت سے مالا مال کیا. یہ اس کا کرم ہے, میرا کوئی اس میں حق نہیں. اور مجھے اپنی ایک بہت پرانی بات یاد آئی, بہت پرانی. جب میں بچہ تھا 11-12 سال کی عمر کا اور تراج ایک گاؤں ہے وہاں ایک چھوٹا مدرسہ تھا وہاں میں پڑھتا تھا. تو چھوٹا سا گاؤں ہے, چھوٹا سا مدرسہ ہے, صرف تعلیم وہاں پر ہوتی تھی. اور ہمارے دو بڑے بھائی وہاں قریب میں ڈابھیل ایک بہت بڑا مدرسہ ہے وہاں تعلیم پاتے تھے. اس مدرسے میں دوپہر کے ایک گھنٹے میں کچھ اور بھی ہنر کی چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو ہمارے ایک بھائی نے سلائی کلاس میں بھی ایک گھنٹہ لیا اور وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ سینا سیکھ رہے تھے. اور ایک بھائی نے گھڑی سازی کا شعبہ تھا, گھڑی ریپیئر کرنا, تو وہ سکھاتے تھے, اس میں انہوں نے اپنا گھنٹہ لیا. تو یہ دنیاوی فنون ہے کہ بعد میں انسان پڑھنے پڑھانے کے ساتھ بھی اس لائن کو چلا سکتا ہے تاکہ ضرورت میں یہ کام آئے. تو مجھے یاد ہے کہ جب یہ معلوم ہوا مجھے کہ میرے دونوں بھائی کوئی گھڑی سازی سیکھ رہا ہے, کوئی سلائی کام سیکھ رہا ہے, اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے والد صاحب پر خط لکھا کہ یہ دونوں تو سیکھ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور میں صرف پڑھنے میں لگا ہوا ہوں. تو خیر والد صاحب نے جو جواب دیا ہوگا بال ہی سمجھایا کہ ابھی تمہاری عمر پڑھنے کی ہے, تم پڑھ لو, پھر بعد میں جو بھی کام کرنا ہو کر سکتے ہو, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تسلی ہو گئی جو بھی لکھا ہوگا. اب تو 50 سال پہلے کی بات ہے, مگر کہنا یہ ہے کہ وہ دن بھی تھا اور آج کا دن بھی تھا کہ پڑھنے کے بعد کوئی ہنر کوئی فن سیکھا ہی نہیں, صرف علم ہی علم میں لگے رہے. تو اللہ تعالیٰ کا قبول حسن ہے کہ اس نے اب تک علم کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر رکھا ہے. میرا جو سفر ہوتا ہے ہندوستان کا, वो जैसे लोगों का तसव्वुर है कि भाई हॉलीडे में जा रहे हैं, तो ये हॉलीडे नहीं है। हकीकत यह है कि वहाँ यहाँ से ज़्यादा मशगूल हो जाता हूँ, और पढ़ने पढ़ाने ही का सिलसिला है। एक बहुत बड़ा इल्मी इदारा है गुजरात का, बेहतरीन मदरसा दारुल उलूम फलाह दारैन, जहाँ से बड़े बड़े उलमा फारिग होते हैं। वहाँ मैं पहले भी रहा, हिंदुस्तान छोड़ने से पहले, इंग्लैंड आने से पहले, तो अब भी वो लोग कदर की निगाह से देख रहे हैं। और मुझ पर इतना उनका दबाव है, इसरार है कि मैं कुछ दिन के लिए भी वहाँ पहुँचूँ और वहाँ के बच्चों को कुछ पढ़ने पढ़ाने की खिदमत में वहाँ रहूँ। तो अक्टूबर में सफ़र हुआ वो भी इसी नीयत से, और अभी जो सफ़र हुआ वो भी इसी नीयत से। फिर अल्लाह ने तौफीक दी, एक और इदारा सूरत ज़िले में मजलिस दावतुल हक़ी के नाम से उन जगह में कायम करने की तौफीक दी 1999 में। तब से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ काम हो रहा है, 350 तलबा बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं, उनकी तालीमी जिम्मेदारी भी यहाँ बैठे बैठे मुझ पर ही है। अल्लाह ताला ने फिक्र की तौफीक दी है। तो ये नहीं कि हम जाते हैं हिंदुस्तान में तो कहीं घूमने निकल गए, जैसे लोग आगरा जाते हैं, ताजमहल देखते हैं, कोई मद्रास जाता है, कोई कहाँ जाता है। ताजमहल देखने की बात यह है कि इंग्लैंड आने से पहले एक मरतबा देखा था 1983 में, बस उसके बाद किसको फुर्सत मिल रही कि वहाँ जाकर खामखा उनकी उन पत्थरों की ज़ियारत करें। सिर्फ और सिर्फ मशगूलियत ये बताने के लिए, और ये बताना भी कुरानी नस के लिए। मैंने आयत पढ़ी, वम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों को बयान करो। ये भी अल्लाह का इनाम है कि 50 साल हो गए हैं और पढ़ाते हुए 45 साल गुजर गए हैं, अल्लाह ने इसी निस्बत के लिए कबूल फरमाया है। वहाँ भी जाना, पढ़ना पढ़ाना सिलसिला, यहाँ आया, ये आप देख रहे हैं 3 तालिबे इल्म कनाडा से आए सिर्फ हदीस शरीफ पढ़ने के लिए। मजलिस दावतुल हक के इसी इहाते में क़याम है, यहीं के मेहमान हैं। अब वो महीना सवा महीना जो भी इनकी नियत है, तो वो मुझसे हदीस शरीफ पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज की दुनिया में हर जगह मदरसे हैं, हर जगह अफराद हैं, उलमा हैं, लेकिन ये एक ताल्लुक़ की बात है, अकीदत की और मोहब्बत की बात है कि यहाँ आता हूँ तो वहाँ खींचा जाता हूँ, वहाँ होता हूँ तो फिर यहाँ खींचा जाता हूँ, हिंदुस्तान जाता हूँ तो फौरन हफ्ते में फ़ोन आ जाता है कि भाई ये परेशानी है, तुम जल्दी से आओ, तो फिर यहाँ की फिक्र सवार। अब यहाँ बैठा हूँ तो फिर वहाँ से कोई फ़ोन आ जाएगा, भाई ये परेशानी हुई, तुम उसकी फिक्र करो और वहां आओ। तो क्या कहते हैं उसको, पुश एंड पुल, उसी में चक्कर में मैं बाल चल रहा हूं। मगर अल्लाह की इस तौफीक का मैं शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ने इल्म की निस्बत से मुझे मुत्तसिफ किया है, मालामाल किया है। एक काम पढ़ने पढ़ाने का है, दूसरा काम अल्लाह ताला ने तसनीफ व तालीफ का लिया, लिखने पढ़ने का, राइटर। अल्लाह ने वो काम भी महज अपनी तौफीक से लिया है। अच्छे अच्छे उलमा हैं, लेकिन ये फ़न बाहर जिस ज़ौक को चाहता है और जिस सलाहियत को चाहता है, अल्लाह ताला ने हमें उस तौफीक से नवाजा है, उसका करम है कि इस छोटी सी जगह में बैठे हुए हदीस शरीफ पर अल्लाह ताला हमसे काम ले रहे हैं, ये महज उसका करम है। तो सिर्फ ये कहना है कि आप हजरात चूँकि दावतुल हक के नमाजी हैं, हमेशा आमद और रफ्त है, साथ है, ये ना समझे कि मैं इसको छोड़कर वैसे ही भागता रहता हूँ। मेरा कोई मकसद दुनियावी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ एक दीनी मकसद की खातिर सफ़र करता हूँ। जब भी गया हूँ, कहीं भी गया हूँ, तो यही दीन की निस्बत होती है। उसकी मोटी सी मिसाल है, जैसे माशाल्लाह तबलीगी जमात वाले जमातों में जाते हैं, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कनाडा जा रहा है, कोई अफ्रीका जा रहा है, तो क्या आप ही कहेंगे हॉलीडे के लिए गया, वहाँ क्या नियत होगी, क्या कहेंगे आप, भाई जमात में गया। दावत और तबलीग में गया है, तो जैसे दावत और तबलीग एक काम है, एक जिम्मेदारी है कि हर बंदा यहाँ है वहाँ है, दूसरे मुल्कों का सफर कर रहा है, दीन की निस्बत पर ऐसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमाया इल्मे दीन की निस्बत पर, और उसी निस्बत से सफर हो रहा है। दुआ करें अल्लाह ताला इस काम को कबूल फरमा लें, और आप हजरात के लिए भी ये शर्फ का मकाम है कि आप में रहने वाला एक छोटा सा इंसान, लेकिन अल्लाह ताला उससे दीन का काम ले रहे हैं, इल्मे दीन का शर्फ उसको अता फरमा रखा है। और ये तो अभी एक ही लाइन है, और अल्लाह ताला ने फिर खानका ही नस्बत से भी जो अल्लाह ताला ने फौल फरमाया है, अगर उसको छेड़ने जाऊं तो शायद एक कदम भी दावत लक में ना रहे, उसको तो छेड़ा ही नहीं। बुजुर्गों से जो नस्बत है, ताल्लुक है, और एक नहीं बल्कि कई कई अकाबिर और बुजुर्गों से जो अल्लाह ताला ने दीनी फैजान फरमाया है, उस काम को तो हमने अभी एक ही तरफ रखा है, दूसरे पहले ही काम में लगे हुए हैं। अल्लाह कबूल फरमाए अपने करम से, और यहाँ रहूं तब भी, यहाँ से गायब हूँ तब भी, एक बात और भी याद करनी है कि हर वक्त माशाल्लाह अगर गायब भी हों तो इसी दावत लग का ध्यान रहता है, ये नहीं कि गायब हों, रिपोर्ट पहुँचती रहती है, हालात मालूम होते रहते हैं दुआ में, और वैसे भी इसके कामों की तकमील के जो जो ख्यालात हैं, तो हर वक्त ये दुआ रहती है अल्लाह ताला यहाँ के कामों को आसानी बसहूलत पूरा फरमाए। भाई हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई बंदा कुछ नहीं करता, वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, जब अल्लाह चाहेंगे सब काम आसान हो जाएंगे, हमारी तो सिर्फ हिम्मत है, सिर्फ ख्याल है कि हमें ये काम करना है, बस आगे क्या है, कुछ नहीं कर सकते हम, तो एक ईंट भी नहीं उठा रहे हैं, अल्लाह ताला ही उठवा रहे हैं, अल्लाह ताला ही काम ले रहे हैं। और हर इंसान यही सोचे कि अगर उससे कोई दीन का काम हो रहा है तो वो खुद नहीं कर रहा है, अल्लाह ताला उससे ले रहे हैं, किसी का माल कबूल कर रहे हैं, किसी का जहन कबूल कर रहे हैं, किसी का इल्म कबूल कर रहे हैं, किसी का दीन कबूल कर रहे हैं, किसी की दुआ और तवज्जो कबूल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला काम बना रहे हैं। ये अल्लाह की मदद है, अल्लाह का फजल है, उसका करम है कि अल्लाह ताला काम ले रहे हैं। कोई अगर चंदा देता है वो भी अल्लाह की तौफीक से देता है। हमारे हजरत वाला शाह हकीम अख्तर साहब फरमाते हैं, कोई दे रहा है तो ये कहो कि अल्लाह ताला की जो बहुत सी सिफात हैं उनमें से सिफत मौती की उस पर तजल्ली हुई है, और वो अल्लाह ताला की सिफत मुगनी और सिफत मौती का असर है कि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। और अगर कोई नहीं दे रहा है तो ये भी अल्लाह ताला की एक सिफत है, अलकाबिज अलमान्या, तो अल्लाह ताला की सिफत काबिज और सिफत माने की तजल्ली हो रही है उसके ऊपर, जिसकी वजह से वो नहीं दे रहा है। देना भी अल्लाह के इख्तियार में, ना देना भी अल्लाह के इख्तियार में, कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने दिया तो ये काम हो गया, ना देता तो ना होता, हरगिज ऐसा नहीं, अल्लाह का निजाम ही कुछ अजीब और गरीब है। जो बंदा अपने आप को झुकाकर अल्लाह के रास्ते में चलता है अल्लाह ताला उसी से काम ले लेते हैं, और जो बंदा किसी भी तरह के कोई बढ़ाए रखकर काम करना चाहते हैं अल्लाह ताला उसे महरूम कर देते हैं। हदीस शरीफ मैंने अभी पढ़ी, मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने यह हदीस सुनी और अल्लाह ने उनकी इतनी वसात अता फरमाई थी कि तने तन्हा अपने माल से मस्जिद नबवी बनाई है, तने तन्हा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह, उनकी मालदारी तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इतनी थी कि ग़ज़वे तबूक का तहाई हिस्सा उन्होंने तन्हा अदा किया है, तन्हा, और इतना माल दिया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश होकर फरमाया कि अगर उस्मान इसके बाद कोई अमल न करे तो कोई नुकसान नहीं, मा दर्रा उस्मान मा अमिल बादलहु, अब इसके बाद कुछ न करे तो भी उसको कोई नुकसान नहीं, जन्नत में जाएगा, इतना दिया, इतना खुश कर दिया। تو یہ تو حضور کے زمانے کی حالت, اور پھر اللہ نے تجارت میں کیا برکتیں دی ہوں کہ اپنے زمانے خلافت میں پوری مسجد نبوی بنائی, اور کس کی بنائی, چھپر کی نہیں بلکہ اس دور کا جو عالیشان پتھر ہو سکتا تھا اور لکڑی کے دروازے اور کھڑکیاں ہو سکتی تھی اس زمانے کی, جو اعلیٰ سے اعلیٰ وہ منگوائے اور وہ اس سے مسجد نبوی بنائی. صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, حضور کی طرز کی جو مسجد تھی چھپر کی بنی ہوئی, کھجور کے درختوں کی بنی ہوئی, اس سنت کو چھوڑ رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اگر اس سنت پر عمل کرتے تو آج بھی چھپر کی مسجد ہوتی, اور تنہا وہ مسجد نہیں ساری مسجدیں ہوتی. پھر آپ لوگ ایک بھی مسجد میں نہیں آتے, ارے چھپر کی مسجد میں کون جائے, وہاں گرمی ہو رہی ہے, پریشانی ہو رہی ہے, پسینہ ہو رہا ہے, وہاں پنکھے نہیں, وہاں لائٹ نہیں, کون نماز پڑھے گا, کوئی نہیں پڑھتا. اپنے گھر میں گھسے رہو, وہیں بیٹھے رہو, وہ اعلیٰ مکان ہے, سب کو سہولتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر اگلے زمانے کے حالات کھول دیے, جب لوگ اپنے اپنے مکان اعلیٰ اور اعلیٰ ترین بنائیں گے تب مسجد بھی اسی انداز کی بننی چاہیے. یہ شان دے رہے تھے عثمان کی, بنائی مسجد پورے اپنے خرچ سے, اور آج بھی وہی طرز الحمدللہ چل رہا ہے. کہاں حضرت عثمان نے بنایا اور آج کی مسجد نبوی کا تقابل کر, اللہ اکبر, کہاں سے کہاں پہنچی ہے. بنیاد قائم کر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. اس حدیث پر عمل کیا, من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ, جو آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا, بنا للہ, پہلی قید لگا دی للہ, اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ, اللہ اس کے لیے جنت گھر بنائے. اور حدیث شریف میں آتا ہے ولو, اگرچہ پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو, کمف حسی قطاطم, ایک پرندہ ہوتا ہے کبوتر کی طرح, وہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے, اتنی بھی مسجد بنا دو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. شارحین کو اور شرح حدیث نے اس کی وجہ, اس کی صورت بتائی کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ گھونسلے کی طرح مسجد ہو, کون نماز پڑھے گا, پیر رکھے گا ٹوٹ جائے گی. فرمایا مسجد تو بڑی بن رہی ہے, اس میں اپنی وسعت کے مطابق چاہے تھوڑا سا بھی حصہ لگا لے گا, اللہ اس کے نام پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیں گے. معمولی بات ہے, یہ ہے من بنا للہ مسجد. کتنی معمولی قیمت, معمولی عطیہ انسان کسی مسجد میں دیتا ہے, اور سچی نیت سے دے, اخلاص سے دے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے, پھر دیکھے وہاں کیا ملتا ہے. سب عالم غیب ہے, اللہ اس کے اوپر ہمیں ایمان نصیب فرمائے. الحمدللہ دعوت الحق کی مسجد بھی ہو رہی تیار, رکاوٹیں پیش آتی ہیں, آتی رہتی ہیں, کوشش ہے کہ جتنی جلد تیار ہو اللہ تعالیٰ تیار کرا دے. ہم نے تو انگلینڈ کی مسجدوں کو دیکھا, دس دس سال میں تیار ہوئی ہے. وول سول کی مسجد 10 سال لگے تیار ہوتے ہوتے, لگتا ہے وہاں لوگ کہتے ہیں ابھی بن جائے, آج کھودو شام کو مسجد تیار ہو جائے. کوئی ہنسی کھیل تو نہیں ہے بھائی, کوئی آدمی کتنی ہی ہمت کرے, کوشش کرے, لیکن بہرحال وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی زمین و آسمان 6 دن میں بنائے, خلق السماوات والارض فی ستت ایام. اللہ میں کو 6 دن کی ضرورت کیوں پیش آئی, سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تو قادر مطلق ہے, کن فیکون ہے ان کا تو معاملہ, ادھر ارادہ ہوا ادھر وجود ہوا, پھر 6 دن کی بات قرآن میں آئی. علماء نے لکھا ہے کہ تاکہ انسانوں کو سبق ملے کہ کام آہستہ آہستہ کرنا چاہیے, یہ نہیں کہ آج ہی سوچو اور آج ہی تیار ہو جائے. بہرحال فکر ہے, کوشش ہے, جیسے آپ لوگوں کو فکر ہے ہمیں بھی فکر ہے, ہم پر بھی اللہ نے ذمہ داری ڈالی ہے. ہم کہیں بھی رہیں, ہزاروں میل دور ہوں, لیکن فکر یہی کی ہے اللہ جلدی پورا کرا دے, اللہ عافیت کے ساتھ. کرنے والے کام کر رہے ہیں الحمدللہ, ان کو بھی رکاوٹیں پیش آتی, کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ, حالات ہوتے ہیں ہر ایک کے, اور کچھ رکاوٹیں ہمیں بھی ہے کہ بھائی جتنی जितना जल्दी और जितना अच्छा तआवुन लोगों का मिलेगा अल्लाह के नाम पर देने वालों का मिलेगा उतना ही काम आसान होगा। अब लोग कहते हैं मौलाना अय्यूब ने तो ऐलानी बंद कर दिया है, मालूम होता है पैसे बहुत हो गए हैं। हमने इसलिए बंद कर दिया कि लोग कहते थे भाई काम हो नहीं रहा और ये ऐलानी किए जा रहे हैं। तब आज खुलकर ऐलान करता हूं कि भाई जितना आप तआवुन करेंगे इंशाल्लाह काम आसान होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुतवज्जे कर रहे हैं लोगों को, हमारी कोई बसात नहीं, हमारी कोई हैसियत नहीं, अल्लाह ही जिसके दिल में डालते हैं वो कहां कहां से भेज रहा है, भेज भी रहा है, जरूरत भी है और काम हो भी रहा है और काम आइंदा होगा भी इंशाल्लाह। नियत है, दुआ है अल्लाह ताला रमजान से पहले ये काम बिल्कुल ऐसा मुकम्मल फरमा दे, वहां इत्मीनान से हम मुंतकिल हो जाए, रमजान के दिन नमाजें तरावी पढ़े और फिर अल्लाह ताला मदरसा और सारे काम जो है वहां पर जारी फरमा दे। आप हजरात मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो, और दुआ से सबसे पहले मदद करें और फिर जिस तरह पहले माशाल्लाह मुखलिसीन अहबाब ने तआवुन किया है ऐसी आइंदा भी खुद भी अपने अहबाब से तआवुन की अपील करें। जब हो जाएगा काम फिर कभी ऐलान नहीं करूंगा भाई अभी और दो, ये भी याद रखो। ये आदत नहीं है कि हम आपसे चंदा मांगते रहें, बहुत शर्म आती है, बहुत ही हया आती है कि हम क्या बार बार आपसे कहें। लोग कहते भाई क्यों नहीं करते ऐलान, भाई ऐलान चंदा करना कोई हमारा काम तो नहीं है ना, हमने कोई धंधा नहीं बनाया है, एक जरूरतन ऐलान करते हैं, जब जरूरत पूरी हो जाएगी हम ऐलान छोड़ देंगे। अल्लाह ताला आप ही को हौसला आता फरमाए, आप खुद जरूरत महसूस करें, जब हो तो इंशाल्लाह आप ताउन करेंगे, आप अपने वास्तों से औरों को मुतवज्जे करेंगे, अल्लाह ताला काम लेंगे। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाह बिहम्दी।